हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम अंतरद्वीप की संक्षेप में कथा करने का प्रयास करेंगे। अंतरद्वीप में अनंत लीलाएं हैं और उसमें प्रधान लीला जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के और जन्म के बाद के बाल्यकाल की लीला है। तो उपेंद्र मिश्रा नाम के बहुत अच्छे सज्जन थे, भक्त थे भगवान के। उनको शायद 5 पुत्र हुए थे, उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान का जगन्नाथ मिश्रा थे। और उनके एक मित्र थे जगन्नाथ उपेंद्र मिश्रा के, नीलांबर चक्रवर्ती। वो भी बड़े भक्त थे भगवान के और कहते हैं कि वो वृषभानु महाराज के अवतार थे नीलांबर चक्रवर्ती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेज। और बड़े ज्योतिषी थे वो। उनकी कन्या सच्ची देवी, इनका विवाह जगन्नाथ मिश्रा से हुआ और विवाह के पश्चात वो मायापुर में आए और यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है योगपीठ, उस जगह पर उनका घर था। और वो जगह जो योगपीठ की, उसका एक बड़ा अच्छा इतिहास है। जैसे मैंने आपको बताया कि वृंदावन में रास के बाद में भगवान ने राधा रानी का ध्यान किया तो वो गौर वर्ण के बने और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अगले अवतार में इसी रूप में आऊँगा। एक और लीला हुई वृंदावन में, संक्षेप में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। ब्रह्मा जी को पता चला कि अगासुर का वध हुआ और देवताओं ने बताया कि जिसने वध किया वो 7 साल का बालक है और वो 7 साल का बालक नहीं है, वो भगवान है हमारे। तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। जिस अघासुर ने इतने हजारों साल तक थैथयाट बना के रखा था पूरा देवता लोक में, सब थर्रा थे उनके, ऐसे अघासुर को 7 साल के बालक ने मारा, मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए वो पृथ्वी पर आए, आकाश में अपने हंस पर बैठकर देख रहे हैं। तो भगवान सबकी जूठन खा रहे हैं जमुना किनारे बैठकर। बड़ी लंबी लीला है, संक्षेप बताते हैं आपको। ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान के लिए योग्य नहीं है। किसी का मुँह का जूठा आधा खा रहे हैं, किसी अपने मुँह का किसी को खिला रहे हैं, वो तो ठीक है महाप्रसाद है, लेकिन किसी के मुँह का जूठा भी खा रहे हैं, 2-3 बार खाया हुआ भी चौथी बार खुद खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी लोग, हम लोग तो ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद ऐसे इतने मंत्र बोलते हैं, उसके बाद में भोग लगाते हैं, उसके बाद में घंटी बजाते हैं, उसके बाद में महाप्रसाद खाते हैं। ये तो ऐसे ही डायरेक्टली आदान प्रदान हो रहा है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। इसलिए संक्षेप में, उन्होंने बछड़े गाय के सारे और बाद में सारे ग्वाल बाल दोनों को चुरा लिया और गायब कर दिया उनको। भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल जितने गाय थे सब अपने रूप में विस्तारित किया उन्होंने, जैसे आए थे वैसे सब बन गए वो अपने आप और घर चले गए। जब ये ब्रह्मा से लौट के आए, इनको छुपा कर लौट के आए तो क्या देखते हैं, जिनको मैं चोरी करके ले गया है तो वो सब लोग यहीं हैं। तो वापस ब्रह्मा लोक में गए, अरे कहीं वहाँ से निकल तो नहीं आए, तो वहाँ पर भी सोए हुए मिले। फिर वापस आए तो देखे यहाँ पर भी मिले, तो बड़े भ्रमित हो गए। वो क्या है मालूम है आपको, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स इज ब्रह्मा। और एक नहीं है, चार है, चार दिमाग है, 4 सर है, 4 दिमाग है उसके अंदर। और सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर है दुनिया का निर्माण करने का, उसमें फिट किया गया है, हाउ टू क्रिएट, इतना बड़ा दिमाग है। वो एकदम भ्रमित हो गए पूरे, और उनके भ्रम में और भर डालने के लिए भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल और जितने ग्वाल बाल और गाय वो खुद बने थे वो सब विष्णु बन गए। और भ्रम में बढ़ोतरी करने के लिए क्या किया, हर एक विष्णु के सामने 33 करोड़ देवताओं का एक सेट उनकी पूजा कर रहा है, ऐसा एक अद्भुत सीन निर्माण हो गया। तो ब्रह्मा जी पूरी तरह से विमोहित हो गए और भ्रम में और बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया, अचानक सारे विष्णु लोग गायब कर दिए और वो अकेले ऐसे दो हाथ वाले बालक बनकर हाथ में मक्खन आधा लेकर ढूंढ रहे, मेरे गाय कहाँ गए, मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे बालक कहाँ गए। तब वो समझ गए ये बालक नहीं है, मेरे भगवान है। उनके चरणों में गिर गए, स्तुति की उनकी बहुत, माफ़ी मांगी बहुत। वो कहाँ गए सेनापति प्रभु? तो भगवान ने फिर माफ़ किया उनको और वो वहाँ से चले गए। भगवान ने बोला दोबारा नहीं करना ऐसी गलती आप, हाँ बोल के चले गए। लेकिन उनका पश्चाताप जो ना उतना ज़्यादा हो गया था उनको बहुत, तो अपने हंस से उड़े और कुछ देर बाद वापस उतर गए। उतरे वहाँ पर और एक जगह वृंदावन में रोए, बंसीवट के पास जगह है वो, आप भी जा सकते हो वहाँ पर, उसका नाम है ब्रह्मकुंड। 10 मंजिल की बिल्डिंग होगी ना कोई ज़मीन के अंदर, उसका आखिरी मंजिल ज़मीन पर होगा। तो कैसे होगा, इतना गहरा और कितना विशाल होगा कुंड वो, उतना वो रोए और उतना उनके आंखों से आंसू आए और वो कुंड भर गया पूरा। तब थोड़ा दिमाग उनका शांत हो गया पश्चाताप से और फिर हंस में बैठ के उड़े और ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, फिर भी उनका पश्चाताप ठंडा नहीं हुआ था। ब्रह्मलोक में जाने के पहले वो उतर गए नीचे वापस और एक जगह पर उन्होंने तपस्या किया। क्या तपस्या किया, बहुत विचार किया उसने उन्होंने कि मैं ब्रह्मा बना और मुझे इतना अहंकार हो गया मेरे पोजीशन का, इतनी मेरी अथॉरिटी है, इतना मेरा बल है, इतनी मेरी शक्ति है, इसकी वजह से मैं मेरे भगवान को पहचान नहीं पाया। अगर मैं सामान्य जीव होता तो ये गलती नहीं करता, ये मेरा पद जो है ना, पोजीशन जो पोस्ट है मेरा, ये बहुत भयंकर है। तो वो भाव से उतरे थे वो तपस्या करने के लिए कि भगवान मुझे अगली बार ये पोस्ट नहीं चाहिए। हम सब लोग काम किस लिए करते हैं, प्रमोशन के लिए। हर एक व्यक्ति काम करता है किसके लिए, प्रमोशन प्राप्त करने के, मैं जो आज हूं उससे बड़ा हो जाऊं, आज जो कमा रहा हूं उससे अधिक कमाऊं, आज इतना अधिकार है उससे अधिक अधिकार प्राप्त हो, नंबर वन बन जाऊं, है ना। ऐसा हर एक आदमी करता है। लेकिन कोई आदमी ऐसा है क्या जो ऑलरेडी सीईओ है, वो चपरासी बनने के लिए तपस्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, एंट्रेंस दे रहा है, मैं चपरासी बनना है, ऐसा कोई है क्या? आपका डीन हॉस्पिटल में तपस्या कर रहा है कि मुझे अभी हाउस फिजिशियन बनना है, मुझे अभी MBBS स्टूडेंट बनना है। कोई मैटर्न नर्स की है जो तपस्या कर रही है मुझे अभी स्टूडेंट बनना है, ऐसा कोई नहीं करता। ये हमारे ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड के CEO है, वो क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अगली बार ब्रह्मा मत बनाना, ऐसा बनाना एकदम तुच्छ बनाना, ताकि मैं कुछ भी ना रहूं। बहुत लंबी समय तपस्या की, और कहाँ तपस्या की बताएं आपको, जहाँ पर आज जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी का घर है, जिसको हम योगपीठ कहते हैं, वहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या की द्वापर युग में। तब ना जगन्नाथ मिश्रा थे, ना सची देवी थी, ना महाप्रभु का जन्म हुआ था, जो द्वापर युग की बात है। अभी भगवान 5 साल के बालक है, अभी तक तो 10 साल पे होके मथुरा भी नहीं गए, तब की बात है ये। तब आकर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है इस जगह पर, योगपीठ की जगह पर, और इस जगह पर ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया है, जो अवतार अभी तक हुआ नहीं है, जो होने वाला है 5000 जितने सालों के बाद में। और वो सुंदर गौर वर्ण का दर्शन दिया उन्होंने, उन्होंने कहा हे ब्रह्मा, मैं आपके भाव पर बड़ा प्रसन्न हूँ। क्या दिव्य भाव है आपका, आप इतने बड़े व्यक्ति हो और तपस्या कर रहे हो तुच्छ व्यक्ति बनने के लिए, मैं आपके नम्र भाव से बड़ा प्रसन्न हो गया, बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल अगले जन्म में कोई पोस्ट मत देना, मेरा जन्म जो है अछूत के घर पे होना चाहिए, कोई मेरा नाम कहीं भी नहीं होना चाहिए, और एक जरूर होना चाहिए, मैंने ब्रह्मा का इतना बड़ा प्राप्त करके बाद भी आपके लीला में बाधा डाला, आपकी लीला को भंग किया, आपकी लीला चल रही थी, मैंने बछड़ों को और गाय को चुरा लिया, लीला में व्यत्यय डाला, अगले जन्म में मैं एक तुच्छ सहायक बनकर आपके लीला को सहायता करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू असिस्ट यू इन योर पास्ट टाइम्स। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देकर, उन्होंने कहा अगले जन्म में मैं इस रूप में अवतार लेने वाला हूँ, और गांव गांव में, शहर शहर में, जगह जगह जाकर मैं संकीर्तन करूंगा, नाचूंगा, भगवान के नाम का वितरण करूंगा, कृष्ण प्रेम का अनुभव करूंगा, तब आप यवन कुल में जन्म लेंगे जहां पर गाय खाते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे कुल में आप जन्म लोगे। लेकिन आप उस जन्म में 300,000 जाप करोगे भगवान के नाम का, और उसकी वजह से आप नाम आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे, और मेरे संकीर्तन आंदोलन में मेरे आदेश से आप जगह जगह जाकर, घर घर में जाकर प्रचार करोगे, और आपका नाम हरिदास ठाकुर होगा। हरिदास ठाकुर की। तुम्हारे ब्रह्मा जी 5,000 साल के बाद में पृथ्वी पर हरिदास ठाकुर बने, उन्होंने 300,000 नाम का जप किया, जीवन के अंत में भगवत धाम चले गए। तो वो जीव जो ब्रह्मा बने थे उस समय, जिन्होंने वो बालों को उठाने का अपराध किया था, वो जीव हरिदास ठाकुर बनकर गौलोक धाम चले गए, और दूसरे कोई व्यक्ति ब्रह्मा भी बने हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में, जो 51st ईयर में है अभी। तो ये जो लीला है वो उसी जगह हुई थी जहाँ पर अभी योगपीठ है और जहाँ पर निमाई का जन्म हुआ है। तो इनका विवाह जब हुआ तो 9 कन्याएं हुई उनको, एक के बाद एक एक कन्या जो है बीमार होकर गुजर गई। उसके बाद में उनको एक पुत्र हुआ जो बलराम जी का अवतार था, जिसका नाम रखा विश्वरूप। बड़ा सुंदर बालक था ये, बड़ा शांत स्वभाव का, बड़ा भक्त था, और उसे बचपन से ही शास्त्र में बड़ी रुचि थी। महाविष्णु के अवतार जो थे अद्वैत आचार्य, उनका घर भी इनके ही सामने था। वैसा उनका जन्म, अद्वैत आचार्य का जन्म जो वो श्रीहट्ट में हुआ था, फिर शांतिपुर पढ़ने के लिए वहाँ पर आए थे वो। और जैसे महाप्रभु का जन्म हुआ उन्होंने अपना एक और एक घर बना लिया महाप्रभु के घर के बाजू में, उनके लीलाओं को देखने के लिए। उम्र से बहुत बड़े थे वो, 40-45 साल बड़े थे महाप्रभु से, निमाई से। तो ये अद्वैत आचार्य के घर में भागवत पढ़ने के लिए जाया करते थे विश्वरूप, और इसकी वजह से विश्वरूप को किसी भी संसारी चीज में रुचि नहीं थी, नो इंटरेस्ट। तो जगन्नाथ मिश्रा परेशान हो गए, भले ये लड़का में कोई संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, दिन रात भगवान की लीला में, भागवत सुनने में मग्न रहता है अद्वैत आचार्य के घर पे। तो एक दिन चर्चा किया उन्होंने बैठकर कि हमें विश्वरूप का विवाह करना चाहिए, कोई अच्छी सी सद्गुण संपन्न कन्या को देखकर विवाह करेंगे, थोड़ा संसार में प्रवेश करेगा, ये दुनियादारी में प्रवेश करेगा तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। ये बात विश्वरूप के कान पे आई कि मेरे माता पिता मेरे विवाह का प्लानिंग कर रहे हैं। उसी दिन विश्वरूप घर छोड़ के चले गए, किसी को पता नहीं चला कहाँ चले गए। आगे जाकर शास्त्र में वर्णन आता है कि वो दूर गए, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, शंकरारण्य स्वामी बन गए वो। और फिर पता चला कि पंडरपुर में उन्होंने शरीर छोड़ दिया कई साल के बाद में। 24 साल के बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो अपने भाई को ढूंढने के बहाने वो भ्रमण करने चले गए, और आखिर में वहाँ पहुँचे पंडरपुर में, जहाँ पर उनके भाई ने सन्यासी के रूप में शरीर त्याग दिया था। तो ये जब विश्वरूप घर छोड़ के चले गए तो सच्ची माता को बहुत गुस्सा आया कि ये जो अद्वैत आचार्य है ना, इसकी वजह से मेरे पुत्र ऐसे भ्रमित हो गए और घर छोड़ के चले गए। तो एक मन में उन्होंने अपराध किया उनका, मन के अंदर कि ये अद्वैत आचार्य अच्छे आदमी नहीं है, इन्होंने मेरा बेटा छीन लिया और उसकी वजह से बेटा चला गया। उसके बाद में निमाई के लिए वो गर्भवती हो गई, मतलब जाने के बाद नहीं, जब ये विश्वरूप वहाँ पर थे एक युवा अवस्था में, छोटे से उम्र में थे, घर से गए नहीं थे, उसके बाद में ये दोबारा गर्भवती हुई निमाई पंडित, मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में। तो जब गर्भवती थी तो सारी देवताएं रोज दिव्य रूप में आकर उनको दर्शन देते थे और ये उनको प्रणाम करती थी, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये वो भी उनको प्रणाम करते थे, फिर नीचे उतरते थे और उनको प्रदक्षिणा करते थे और ज़मीन पर झुककर प्रणाम करके चले जाते थे। उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये क्या चीज़ है, मेरे पेट में कौन है। वो अपने पति को बताती थी कि सारी देवताएं जो है वो मुझे बड़े दिव्य शरीर में आते हैं मेरे पास और मुझे बार बार प्रणाम करते हैं और गीत गाते हैं, प्रार्थनाएँ करते रहते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, क्योंकि निमाई के लिए गर्भवती होने के पहले स्वयं कृष्ण भगवान जो है वो जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में प्रकट हुए थे। तो जगन्नाथ मिश्रा भी बड़े दिव्य सुंदर लग रहे थे, एकदम प्रकाशमान हो गए थे। उसके बाद वो दिव्य तेज जो है वो जगन्नाथ मिश्रा के हृदय से सच्ची माता के हृदय में ट्रांसफर हो गया और हृदय से फिर वो गर्भ में स्थित हो गया और वो गर्भवती हो गई और बड़ी सुंदर प्रकाशित हो गई वो। और तब देवता लोगों ने आकर प्रणाम करना आरंभ किया। उसके बाद में उस समय ऐसा माहौल था यहाँ पर नदिया डिस्ट्रिक्ट में, ये जो नदिया जिला है ना, ये विद्या का स्थान था। दुनिया भर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से सब लोग ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण भी थे, वो कहते हैं फेस्टिवल के दिन भी गोविंद का नाम लेते नहीं थे, इतने पतन हो गया। इतने वेद के प्रकांड पंडित जो है वो गुड्डा गुड्डी का शादी करने लगे, घर में कुत्ता और कुत्तियों का विवाह करने लगे, बिल्ला और बिल्लियों का विवाह करने लगे, इतना पतन हो गया उनका। तो अद्वैत आचार्य तब बुजुर्ग थे, ऑलरेडी शांतिपुर में वो उपस्थित थे, जन्म हो गया था उनका। उन्होंने मिलकर, हरिदास जी का जन्म भी हो गया था, दोनों ने मिलकर बहुत प्रचार किया था, लेकिन एक स्थिति ऐसी हो गई कि वो एकदम परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को प्रचार करना हमारे बस की बात नहीं, इतने पतित हो गई है, अभी वेद तो दूर रह गए, भगवान का नाम तो दूर रह गया, नदी में स्नान करना दूर हो गया, अभी तो गुड्डा गुड्डी और कुत्ता कुत्तियों का विवाह कर रहे हैं, उसमें लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, फिश दे लोगों को, मेजबानी दे रहे हैं, पार्टियां उड़ा रहे हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य ने एक जगह पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी के किनारे बैठकर शालिग्राम शिला को चंदन तुलसी और गंगा जल से सिंचित करके प्रार्थना करेगा तो भगवान उसके लिए अवतार ले सकते हैं। सब प्रचार बंद कर दिया उन्होंने और अपने शांतिपुर में गंगा किनारे में बैठ गए वो शालिग्राम शिला लेकर, और चंदन तुलसी और गंगा जल से रोज उनके लिए पूजा करते थे और रो रो कर पुकारते थे, हे भगवान अभी आप ही आइए, आपके बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता है, प्लीज कम डाउन। रो रो के पुकारा उन्होंने कि भगवान अभी मैं तो महाविष्णु हूं लेकिन फिर भी मेरे बस की बात नहीं है, अभी आप ही को आना होगा, तब जाकर विश्व का कल्याण होगा। उसके उत्तर के रूप में भगवान ने जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में, सची माता के हृदय में और गर्भ में प्रवेश किया। तो इतना पतित समय था कि इतने लोग गिरे हुए थे, लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा जब आई तो उस दिन चंद्र ग्रहण था, क्योंकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन आता है। तो ऐसी व्यवस्था थी भगवान की कि चंद्र ग्रहण के दिन जब भगवान जन्म लेने वाले थे, उस समय सारा नदिया जिला जो था, इतने सारे लोग गंगा नदी में अपने आप को डुबा कर खड़े थे। जो आस्तिक है, जो नास्तिक है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा जानते नहीं हैं, जो पतित हैं, इतना जानते थे कि ग्रहण के दिन नदी में उतर के भगवान का नाम लेना चाहिए, इतना उनको पता था, नहीं तो पाप लगेगा, नहीं तो बुरा असर होगा, अशुभ बातें होंगी जीवन में, पतन होगा, ऐसा उनका डर था। इसलिए कर्मकांडी भाव से क्यों ना हो, जितने भी लोग नवद्वीप में थे सब लोग गंगा नदी में उतर गए और गले तक अपने आप को डुबाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रहण का वेद लगने से ग्रहण काल के काल तक और ग्रहण काल का वेद छूटने तक कई घंटे वो नदी के अंदर खड़े कर भगवान के नाम का उपचारण कर रहे थे। उस समय कुछ यवन लोग थे जो अश्रद्धालु थे या हिंदुओं का द्वेष करते थे, वो भी हिंदुओं को चिढ़ाने के भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अश्रद्धालु चिढ़ाने के भाव से और श्रद्धालु जो भी भाव से, पूरी दुनिया उस समय भगवान का नाम लेने मग्न थी। उस समय जब चंद्रोदय हुआ तो नीम के पेड़ के नीचे अपने घर के बाहर बालक का जन्म हुआ, जैसा हमारा आपका होता है वैसे जन्म नहीं हुआ, सीधे गर्भ से वो पूरी तरह से प्रकट हो गए नीम के पेड़ के बाहर, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए पूरे चतुर्भुज रूप में, हमारे आपके तरह नहीं हुए। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, इसका मतलब क्या, भगवान ने अपने जन्म के समय से दिखा दिया कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मेरे अवतार का पर्पस क्या है। सारे दुनिया को भगवान के नाम के अध्वनि में डुबाने के लिए उनका जन्म हुआ था, जन्म के समय ही सब दुनिया भगवान के नाम को पुकार रही थी। बालक जब थोड़े से बड़े हो गए, उनका नामकरण विधि हुआ, नीलांबर चक्रवर्ती ने कुंडली बनाई और बताया ये तो पिछले जन्म में राम थे, फिर कृष्ण थे, वामन थे, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वरा अवतार, ये सभी उनके अवतार हैं, ये जगत के पालक हैं, इसलिए इनका नाम विश्वंभर रखा जाए। माता ने कहा कि नौ कन्याओं का देहांत हुआ, नीम के पेड़ के जन्म हुआ, नीम का पेड़ बड़ा ऐसा माना गया है कि उससे भूत प्रेत दूर रहते हैं, पूरा अशुभ चीज़ें नष्ट हो जाती है, इसका नाम निमाय रखेंगे, तो निमाय नाम बोलते ही सब अशुभ चीज़ें भागती रहेगी, इस पर कोई बुरा असर नहीं होगा। पड़ोसों की सहेलियों ने कहा, सखियों ने कहा कि ये कृष्ण जैसे हैं लेकिन गौर वर्ण के, इसलिए उनका नाम गौर हरि रखा जाए, और नाना ने नाम रखा विश्वंभर। उसके पश्चात इसका सौंदर्य देखकर सभी सखियां लालयित हो गई थी, पड़ोसी की जब घर पे आती थी बच्चा रोता था जानबूझकर, जब रोता था तो ये क्या कहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक ये चालू है तब तक रोना बंद, जब ये बंद हो गया तो रोना चालू। इस तरह से ग्रुप ग्रुप में सारी सहेलियां पड़ोसन सब आकर जो है दिन रात सच्ची माता के घर पर हरे कृष्ण का कीर्तन किया करते थे। इस तरह से उन्होंने वापस एक बार दिखाया कि मैं क्यों आया हूँ, मैं किसी को चुप रहने दूंगा नहीं, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ सब भगवान का नाम गाते रहेंगे। इस तरह से उन्होंने सब लोगों को भगवान के नाम में लगाया। फिर सब सब पड़ोसन क्या करती थी, मिठाई लेके आती थी, औरत को मिठाई दिखाती थी, फिर वो मिठाई लेने के लिए आता था छोटा सा बालक, तो वह कहती थी तालियां बजाकर पहले नाचो, हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, आप नाचेंगे फिर हम आपको मिठाई देंगे। तो सब तालियां बोलकर गाते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। फिर छोटी सी मिठाई उसको मिलती थी, फिर वो खाता था और दूसरी मांगता था, तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कृष्ण के रूप में, यशोदा के बालक के रूप में छोटे छोटे माखन के नो गुलचे के बहाने सब गोपियाँ उनको नचाती थी, माखन चाहिए नाचो नाचो, तालियां मारती थी नाचती थी, उसी तरह से मिठाई का लालच देकर सभी सखियां जो थी वो तालियां बजा बजा कर उनको नचवाती थी और वो नाचते भी थे। भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर मेरे गोपियों का और भक्तों के हाथ का प्रसाद खाने के लिए इधर पृथ्वी पर आया हूँ, चुरा चुरा कर खाते। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, स्वयं भगवान पधारे हैं तो शेष नाग को भी रहा नहीं गया, अनंत शेष को, तो एक सांप बड़ा बनकर अजगर जैसा बनकर वो आंगन में आया, तो इसको देखकर निमाई जो है भाग गए अपने आंगन से बाहर, घर से आंगन में भाग गए और भाग रहे पीछा कर रहे उसका, और सांप भी भाग रहा है, अचानक सांप रुक जाता है, इतना लंबा सांप जो गोल 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 करके बड़ा बिछाना बना देता है, इसके बीच में जाके बालक सो जाता है। अभी आप सोच सकते हैं सभी सखियां भाग के आती हैं, माता भाग के आती हैं, सब सहेलियां भाग के आती हैं, गोपियां सब जो पड़ोसी औरतें हैं भाग के आती हैं, क्या कर सकती है वो, कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज पास जाएंगे तो सर्प डिस्टर्ब हो जाएगा, वो काटेगा बालक को, और नहीं जाए तो भी इतनी चिंता लगी हुई है कि क्या होगा क्या होगा, आराम से लेटे हुए हैं, सांप भी आराम से लेटा हुआ है। वो जो लीला है ना भगवान की गर्भोदय विष्णु की, जो सांप शेषनाग जो बिस्तर बने हुए हैं, भगवान आराम कर रहे हैं, बहुत देर आराम फरमाया, फिर बालक उठा माँ के पास आया, सांप चला गया, तो अनंत शेष को भी रहा नहीं गया अपने भगवान की सेवा करने के लिए। फिर एक दिन ये माता जो थी वो अपने बालक को रोज सुंदर सुंदर अलंकार पहनाया करती थी, बहुत कीमती हीरे जवाहरात पहनाया करती थी, और वो चमकते थे, खुद का शरीर भी स्वर्णकांति थी, ऊपर से इतने गहने पहने थी, तो कुछ चोरों ने उसको देखा कि इनके घर में आंगन में एक बालक है इतने सारे गहने पहने कर खेलते रहता है, हम लोग उसको एक बार उठाएंगे तो फिर VRS ले लेंगे, आगे जाकर चोरी नहीं करेंगे, एक ही बार इसको लूटेंगे तो बाद में चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारा गहरा पहना करके। तो एक दिन देखते हैं बहुत दिन वो क्या बोलते हैं उसको रेकी रेकी करते हैं, रेकी आके देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, स्टडी करते हैं बहुत, एक दिन जब कोई बड़ी औरत नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, बच्चे ही खाली खेल रहे हैं ऐसा करके, उस समय आते हैं और उसको संदेश दिखाते हैं दूर से, आजा आजा बेटा आजा आजा आजा। तो निमाई जो है वो उसके पास जाता है, तो उनके कहते चलो हम आपको गाँव में घुमा के लेके आते हैं। तो एक हाथ में संदेश देते हैं और दोनों चोर कंधे पे उठाते हैं उसको ले जाते हैं और जाते हैं। वो कदर कोई नहीं है, अंधेरा है, कोई जगह अकेला जगह है, कोई एकांत है, ढूंढते रहते हैं पूरा दूर दूर जाते 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 पूरा नदिया क्षेत्र घूमते हैं, कहीं पर उनको मिलता नहीं है। और घूम घूम के दोबारा आते देखते तो क्या है, उसी घर के सामने आ जाते हैं। इतने यहाँ पर क्या होता है, मैया देखते हैं कह रहे निमाई कहाँ गया, निमाई कहाँ गया, सहेलियों को पूछती है, दोस्तों को पूछती है, निमाई कहाँ गया, पता नहीं था, अभी उठा, कोई दो लोग आए उसको उठा के ले गए। उतने में बहुत देर तक ढूंढते रहे, रोते रहे, हाय हाय निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है, हाय हाय। उतने में दोनों आ गए वो, और ये तुरंत उतर गए उनके कंधे से भाग के करके, मैया मैं भाग खा गया। तो ये चोर बहुत घायल भ्रमित हो गया, अरे हमने दूर दूर जाना चाहा था, घूम घूम के इसी घर के सामने आ गए, पता नहीं किसी औरत ने या किसी बालक ने देख लेता हमको पकड़े जाएंगे, तो वो भाग गए। उतने में मैया बाहर आ गई, उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, कहाँ गए थे? नहीं, दो अच्छे संत लोग आए थे, उन्होंने मुझे पूरा नदिया का सैर कराया, तो उनको वो दो संतों को गिफ्ट देना था कि आपने हमारे बालक को लौटा के लेके आया, लेकिन वो कहीं नहीं थे, वो चले गए थे। इस तरह से चोरों के बहाने निमाई ने क्या किया, उनको भी सेवा दिया, उनके कंधे पर बैठे, पूरा निमाई जो नदिया डिस्ट्रिक्ट था वो सब घूम के आए। फिर एक सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई है वहाँ पर। वो जब मैया बाहर जाती थी तभी ये निमाई जो थे वो जमीन पर चलते हुए दीवार पर चलते थे, दीवार पर चल के सीलिंग पर चलते थे और सीलिंग पर चल के फिर जमीन पर आते थे, तो पूरे घर पे उनके चरणों के चिन्ह दिखाई पड़ते थे। तो फिर मैया बाहर से आती थी तो बालक वहाँ पर नहीं है, लेकिन सारे दीवार पर, साले सीलिंग पर, जमीन पर जो है ऐसे चरण के चिन्ह हैं जिसमें शंख, चक्र, मत्स्य, वो अंकुश, ऐसे दिव्य चिन्ह पड़े हुए हैं। तो उनको लगता था कि मेरे घर पे आज विष्णु स्वयं आकर चल के चले गए। फिर कुछ दिन के बाद वो देखती थी जब बालक को खिला रही है, पिला रही है, तो उनके पैर को देखती थी तो उनको पैरों पर दिव्य निशान देखती थी। लेकिन ये जो वात्सल्य भाव है, दिव्य भाव, उनको समझ में आता नहीं था कि मेरे पुत्र भगवान है। इतना ही लगता था कि मेरा पुत्र बहुत महान है, लेकिन वो भगवान है ऐसा उनको लगता नहीं था। आज जब वो दीवार पर और सीलिंग पर पैरों के चिन्ह देखती थी, वो सोचती थी कि विष्णु आ गए मेरे घर पे, आज मेरा बालक नहीं है और अलग से विष्णु आकर घर को पवित्र करके चले गए। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया उनके घर पे, और तभी थोड़े बड़े हो गए थे, वो बहुत उदम मचाते थे, गंगा जी में जाकर वो साधुओं को उल्टा करते थे, कभी साधु स्नान करते थे एक जगह पर पुरुषों के घाट पर, और कभी स्त्रियां स्नान करती थी अलग जगह पर, तो ये जाकर स्त्रियों के कपड़े साधुओं के जगह पर और साधु के कपड़े स्त्रियों के जगह पर ऐसे करके आते थे। साधु लोग बाहर आते थे तो रोते थे, अपने माताओं के घाट पे कैसे आ गए हम लोग, और औरतें बाहर देखते थे हम लोग साधुओं के घाट पे कैसे आ गए, और ये दूर से सब बच्चे लोग जोर जोर से हंसते थे। फिर कोई गायत्री कर रहे हैं जब आँख बंद करके, तो पिचकारी मारते थे उनके मुंह पर, पैरों के बीच में जाकर उनको उल्टा गिराते थे, और बार बार सब लोग आके कंप्लेंट करते थे कि आपका बालक इतना नटखट है, इतना उधम मचाता है। तो एक दिन घर में ब्राह्मण आ गया, तो ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, उसका एक नियम था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर अपने हाथ से भोजन बनाऊँगा, और उनका एक गोपाल जी की विग्रह था उसके पास, लड्डू गोपाल का, उनको अपने हाथ से बनाकर जहाँ भी जाके वहाँ पर अपने हाथ से बनाकर भोग लगाता था। जैसे ही आए ब्राह्मण देवता बड़े तेज वाले थे, बड़े जगन्नाथ मिश्रा बड़े प्रसन्न हो गए, सची को बुलाया जल्दी जल्दी आओ ब्राह्मण देवता आए, उनके लिए रसोई की व्यवस्था करो, सब्जी का इंतजाम करो, भोग दे दो उनके लिए। तो बहुत सुंदर किचन बनाया उसने, अपना अपना भोग दिया उनको, और उन्होंने अपने हाथ से पूरा भोजन बनाया, चावल बनाया, सब्जी बनाई, मिठाई बनाई, और गोपाल जी को फिर समय तय हो गया तो बस अच्छी तरह से तुलसी रखी, मंत्र बोले, घंटी बजाई, झुक गए, प्रणाम किया, और जैसे ही अपना ऑफरिंग पूरा किया और सर झुका झुका हुआ था उसको उठाया, तो वहाँ अपने निमाई पहुँच गए और अपने हाथ डालकर उसमें राइस खा रहे, संदेश खा रहे, दोनों हाथ से खा रहे, तो वे बोल रहे हाय 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 बालक ने भोग खा लिया, हाय हाय भोग खा लिया। तो वो सुनकर सची माता जगन्नाथ मिश्रा भाग भाग के आ गए, वो तो निमाय सबके सामने गोपाल जी के सामने रखा हुआ भोग खा रहा है। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा है, डंडा लेकर आए, उसको पकड़ के ले गए और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, महाराज जी माफ़ करना हमारा बच्चा, वो दंड है, कृपा करना, वो नहीं थे आज मेरे ही लगता है मुझे गोपाल जी की इच्छा नहीं कि मैं आज अन्न खाऊं, आप कुछ फल ला के देना, फलाहार करेंगे। नहीं नहीं महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है, वो हमारे बेटा, वो सब दंड है, थोड़ा माफ़ी करना, आप दोबारा बनाना, प्लीज़ दोबारा बनाना, मैं आपको सारा भोग सब ला के देता हूँ, सारी व्यवस्था करता हूँ, ये किचन साफ़ कर देते हैं पूरा और नया भोग बनाएंगे। तो जगन्नाथ मिश्रा के आग्रह की वजह से उसने दोबारा भोग बनाना शुरू किया, दोबारा भोग बनाया, अच्छी तरह से ऑफरिंग रखा भगवान के लिए, नैवेद्य तुलसी रखी, झुक गए बड़े लंबे तरह से, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगजिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर उठाया, हाय 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 हाय, फिर वहाँ पर बालक आए और फिर हाथ डालकर सब खा रहे हैं। फिर जगन्नाथ मिश्रा भाग के आए सुनकर, सची माता भाग के आई, सब देवियाँ भाग के आई, क्या हो गया? जब मैंने कहा था ना गोपाल जी की इच्छा नहीं कि मैं अन्न खाऊं, आप मुझे कुछ फल ला के दीजिए। उतने में वहाँ से विश्वरूप आए, क्योंकि वो ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं थे, आज मैं तो खाऊंगा ही नहीं, ये तो साफ है कि गोपाल जी आज चाहते नहीं कि मैं अन्न खाऊं, फलाहारी करूं। फिर वहाँ पर बीच रात में, दो बार बनाने के बाद में रात का समय हो गया, बीच रात में विश्वरूप आए वहाँ पर। जैसे ही विश्वरूप आए तो ये खड़े हो गए ब्राह्मण, पूछने लगे किसका बालक है ये, इतना तेज, इतना सौंदर्य, इतनी नम्रता, इतना ज्ञान, किसका बालक है ये? वो कहते हैं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र है ये। तो वो आके ब्राह्मण के पैर छूते हैं और विनती करते, ब्राह्मण देवता मैं आपसे विनती करता हूँ, आप एक बार और बनाइए, कुछ देर नहीं हुई है, मेरी आपको नम्र विनती है कि आप एक बार और ज़रूर भोजन बनाइए। तो बालक की नम्र विनती को टाल नहीं सकते हो, कहाँ गए हमारे कंट्रोलर, कंट्रोलर्स, इट इज गिविंग इको। थोड़ा साइड में करो उसको ऐसे, हाँ बस, हरे कृष्णा। तो तीसरी बार जब ये बनाने का तय हुआ तो जगन्नाथ मिश्रा ने अपने बालक को डंडे से मारना चाहा, ब्राह्मण ने कहा मत मारना उसको, तो बालक है, भगवान की इच्छा है, क्या करें। तो उन्होंने बच्चे को पकड़ के पड़ोसी के घर में दिया, पड़ोसी का घर बाहर से बंद किया, अंदर औरतों को कहा कि इसको संभाल के रखो, इसको कहीं भाग ना पाए, क्योंकि पहली बार भी जब उन्होंने ऐसा किया था तो उसको पड़ोसों के घर में दिया था, लेकिन इतने चतुर बालक था वो, उनको खेल खेल में खिला खिला कर उनके पैर से नीचे भाग के वापस आया। अभी तीसरी बार जब हमें आया तो उनको सबको वार्न किया कि देखो दूसरी बार तुम्हारे साथ से ही भाग के आया था ये, अब इसको सुला दो आप अच्छी तरह से, बाहर कड़ी लगाई और खुद बाहर डंडा लेकर बैठे। लेकिन ऐसा भगवान की लीला है कि जब ब्राह्मण ने तीसरी बार भोग बनाया उसमें बीच रात हो चुकी थी, सब सखियां सो गई, जगन्नाथ मिश्रा भी सो गए, सच्ची माता भी सो गई, सब पड़ोसी की सखियां भी सो गई और बालक भी सो गया। लेकिन जैसे ही घंटी बजी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, तो दरवाज़ा बंद था उसमें से भी सूक्ष्म रूप से बालक बाहर आया और उसने हाथ डालकर ब्राह्मण का भोग खाना शुरू किया। ब्राह्मण फिर से पुकारे, हाय 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 हाय, बालक ने फिर खाया। उस समय कोई भाग के नहीं आया, सब लोग योग निद्रा में भगवान की इच्छा से, जैसे कंस के समय जब कृष्ण का जन्म हुआ था सभी पहरेदार सो गए थे, हाँ कोई जगह नहीं आवाज़ सुनकर, कोई नहीं आया। तब बालक ने बात करना शुरू किया, अरे ब्राह्मण तुम कैसे भक्त हो, बार बार मंत्र बोलकर मुझे पुकारते हो, मुझे आह्वान करते हो, आओ आओ मेरा भोग लो, और जब मैं आता हूँ तो हाय हाय करके चिल्लाते हो, कैसे भक्त हो तुम? अरे मैं तो हूँ इसको तुम पुकारते रहते हो। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हो गया, कैसा उदंड बालक है, अभी तक तो केवल खा रहा था, अब बोलता है मैं ही गोपाल हूँ। तो उसके आश्चर्य को दूर करने के लिए तुरंत गोपाल का दर्शन दिया उसने। पीछे गाय प्रकट हो गई और गाय के पीछे सारा वृंदावन प्रकट हो गया। उसके पीछे ब्राह्मण ने जमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, राधा कुंड, श्याम कुंड, सभी वनों का दर्शन किया, गायों का दर्शन किया, ग्वाल बालों का दर्शन किया, गोपियों का दर्शन किया। तब ब्राह्मण बेहोश हो गया, फिर उठा, फिर बेहोश हो गया, फिर उठा, फिर बेहोश हो गया। और कृष्ण बांसुरी हाथ में लेकर त्रिभंग अवस्था में गाय को पीछे लेकर खड़े हैं, रोने लगा वो। उसके अंदर अष्टविकार प्रकट हो गए, उसके रोमांच खड़े हो गए, आंखों से पिचकारी की तरह अश्रु निकलने लगे, उसके शरीर के अंदर ऐसे गोले खड़े हो गए। वो कभी रोल कर रहा था, कभी खड़ा हो रहा था, कभी बेहोश हो रहा था, कभी उठ रहा था। उसके बाद में फिर श्री कृष्ण के रूप में बालक ने संवाद किया उनके साथ। उन्होंने कहा, मैं ही हो गोपाल हो जिसके लिए आप पूजन करते आ रहे हो, नंद बाबा के घर में भी आप आए थे, जन्म जन्मांतर से आप मेरी सेवा कर रहे हो और हर जन्म में आपका भोग पाने के लिए मैं इस रूप में आते रहता हूँ, लेकिन आपको ये किसी को बताना नहीं है, अगर आप किसी को बताओगे तो नष्ट हो जाओगे। ऐसा देखो, अभी इतना अद्भुत दर्शन किया और किसी को बोलना भी नहीं है, कैसा होगा ना? आपको समझो कोई बड़ी सीक्रेट चीज़ मालूम पड़ती है, कभी किसी को बताऊं मैं, कभी कैसे बताऊं, ऐसे आपकी इच्छा होती है। उस ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्रा के घर के सामने झोपड़ी बनाई और परमानेंट वहीं निवास किया उसने, और पूरे जितने साल महाप्रभु वहाँ रहे उतने साल सब लीलाओं का दर्शन किया उसने, लेकिन किसी को बता नहीं पाए। हे जगन्नाथ मिश्रा, हे सच्ची माता, पता है आपका बालक कौन है? आपका बालक श्री गोपाल है, श्री वृंदावन नटवर है, मुरली मनोहर श्री कृष्ण है आपका बालक। नहीं बता पाए हो किसी को, अपने आप भी उनको रहस्य रखना पड़ा। फिर उसके बाद में बहुत नटखट थे वो, मुरारी गुप्ता को बहुत तंग करते थे, बड़े उद्दंड विद्वान बने वो, गंगादास पंडित के गुरुकुल में गए और कुछ ही समय पर पंडित बन गए। व्याकरण के विद्यार्थियों को पकड़ पकड़ कर शास्त्र विवाद करते थे, उनको हराते थे, कुछ बात बोलते थे, आप बोलो कुछ बात, उसको डिफीट करते थे। फिर डिफीट होने के बाद जो उन्होंने बात कही उसको खुद डिफीट करते थे, उसके बाद में जो डिफीट करके बात कही तो उसको वापस डिफीट करते थे। उस तरह से जिनको साथ बात बात करते थे उनको पूरा भ्रमित कर देते थे। इन इंग्लिश ही वुड मेक अ पॉइंट एंड डिफीट दैट पॉइंट एंड देन ही वुड आस्क टू डिफीट दैट पॉइंट टू समबडी एल्स एंड देन समबडी एल्स वुड डिफीट दैट पॉइंट, ही वुड अगेन डिफीट दैट पॉइंट एंड लाइक दैट ही विल डिफीट सो मेनी टाइम्स, फाइनली द पीपल विल फॉरगेट व्हाट दे आर डिफीटिंग एंड व्हाट दे आर आर्ग्यूइंग। तो लोग बोलते थे, मुरारी गुप्ता बोलते थे, अरे तू भक्त क्यों नहीं बनता भगवान का, केवल वाद विवाद में उद्दंडता में समय बिता रहा है, जीवन बहुत अमूल्य है। सर एक दिन तुमको भक्त बन के दिखाऊंगा। फिर वो यथावकाश जाते हैं गया में, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत होता है, उनका श्राद्ध करने के लिए निमाई जो है, अभी उनका नाम निमाई पंडित हो गया है क्योंकि व्याकरण के पंडित बन गए ना, उनके विद्यार्थी भी थे। उस विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने केशव कश्मीरी को परास्त किया, अभी लंबी कहानी है, अभी नहीं बताएंगे। केशव कश्मीरी को परास्त किया था उन्होंने, तो उस रूप में वो जब पिताजी गुजर गए तो एकदम गंभीर हो गए, सारी उद्दंडता नष्ट हो गई। गया में गए, श्राद्ध किया, वहाँ पर ईश्वरपुरी की मुलाकात हुई उनकी, जो उनके गुरु बने, उन्होंने दीक्षा दिया उनसे। जब लौटे तो इतने शांत हो गए, एकदम नम्र हो गए, सबका आदर करने लगे, सारी उद्दंडता समाप्त हुई, कोई वाद विवाद नहीं, सबके साथ नम्र व्यवहार, सबको गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, कृष्ण 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 बोल रहे हैं। तो व्याकरण के विद्यार्थी आए, व्याकरण सीखने के लिए गंगा किनारे बैठे, उन्होंने कहा क्रियापद भी कृष्ण है, कर्ता भी कृष्ण है, कार्य भी कृष्ण है, बीज भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। अब ये सारी व्याकरण की किताब गंगा जी में फेंक दो और केवल कृष्ण का नाम का जप करो। तो विद्यार्थी बोलते थे, नहीं हमको किसी से सीखना नहीं है, हमको आपसे ही सीखना है। वो कहते हैं, मैं अभी किसी को कुछ सिखा ही नहीं पाऊंगा, मुझे सब व्याकरण के बीज में, कर्ता में, क्रियापद में, बोलते ना वो नाउन वर्ब, सब पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस जो भी जितने भी अलंकार है वो सबके अंदर मुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा अभी। कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर नदी में किताब फेंक देते हैं, और वो अपनी किताब पढ़ाने वाले और सब लोग पढ़ने वाले किताब सब नदी में फेंकते हैं, तो सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे। उद्दंड निमाय पंडित भगवान के भक्त बन गए। उसके बाद में उसकी माता ने उनका विवाह का निर्णय लिया। लक्ष्मी प्रिया देवी नाम का सुंदर एक सुयोग्य उपवर कन्या से उनका विवाह कर दिया। फिर दोबारा वाराणसी गए महाप्रभु, मतलब निमाय पंडित, पंडिताई करके कुछ धन कमाने के लिए। उस समय कहते हैं कि भगवान के विरह के वजह से, मतलब अपने पति के विरह के वजह से लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो गया। बाहरी रूप से, लौकिक रूप से सांप का दंश होने से वो गुजर गई, लेकिन उसका अंतरंग कारण ये था कि भगवान के विरह के सांप का दंश उसको हुआ और वो अपने शरीर को रख नहीं पाई, वो देहांत हो गया उसका। तो माता ने विचार किया कि उसका दूसरा विवाह होना चाहिए। तो विष्णुप्रिया नाम की सुंदर और एक कन्या का भगवान के साथ भी विवाह किया। ये दोनों विवाह जो है उसी घर में हुए हैं जहाँ पर हम कल जाने वाले हैं। और विष्णुप्रिया देवी का जो विवाह हुआ तब वो कुछ 9 साल की थी, छोटी सी कन्या। फिर भगवान ने श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन शुरू किया। फिर एक बार वो संकीर्तन कर रहे थे, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और कृष्ण कृष्ण ही बोलते जा रहे थे। एक दिन बैठे थे तो कृष्ण क्या गोपियों का नाम पुकार रहे थे, हे ललिता, हे विशाखा, हे तुंग विद्या, हे सुदेवी, हे रंग देवी, हे चित्रलेखा, हे शैप्या, हे धनिष्ठा। तो विद्यार्थी आ गए, कैसे भक्त हो तुम, कहीं कहाँ लिखा है कि गोपियों का नाम लेना चाहिए, तुम तो गोपियों का नाम ले लो, गलत चीज़ है। तो भाव में थे निमाय पंडित, तो डंडा लेके भागे उनके पीछे। घर पे लौट के आए तो विचार किया उन्होंने, अरे क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ इसलिए मेरा भाव को ये समझ नहीं पा रहे, अगर मुझे इनको भक्त बनाना है तो मुझे सन्यासी बनना पड़ेगा। मैं सन्यासी बनूँगा तो मुझे लोग प्रणाम करेंगे और जो भी कुछ कहूँगा उसका पालन करेंगे, गृहस्थ के रूप में वही बात बताऊँगा नहीं सुनेंगे। तब पहली बार उनके मन में सन्यास लेने की भावना आई। उन्होंने अपने मामा की बात बताई, मामा का नाम था चंद्रशेखर आचार्य, उधर भी हम कल जाएंगे उनके घर पे। फिर नित्यानंद प्रभु को बताई ये बात। फिर जब श्रीवास के घर पे कीर्तन हो रहा था एक दिन, बहुत धूमधाम से रात को कीर्तन हो रहा था बंद दरवाजे में, अचानक कीर्तन रोक दिया भगवान ने, निमाय पंडित ने। बोले क्या बात है, आज कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ घर में कुछ ऐसा हुआ है क्या जिसमें से मुझे वो रोज का अनुभव नहीं हो रहा है, बताओ श्रीवास क्या हुआ, बताओ श्रीवास क्या हुआ। और नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं हुआ, आप अपना कीर्तन कीजिए, कुछ नहीं। लेकिन हुआ ये था कि श्रीवास के पुत्र का देहांत हो गया था बीच कीर्तन में, और वो गए घर पे अंदर, बोले कोई नहीं रोएगा, आपके रोने की आवाज़ से कीर्तन में बाधा आएगी तो मैं माफ़ नहीं करूँगा आपको, चुपचाप दरवाजे बंद करके मुंह में रोना, बाहर आवाज़ नहीं आना चाहिए। फिर कीर्तन में गया, फिर भगवान ने रोक दिया, फिर श्रीवास को बोलना पड़ा कि भगवान मेरे पुत्र का देहांत हो गया है। तो भगवान ने कहा मुझे क्यों नहीं बताया आपने, इतनी बड़ी घटना हुई मुझे छुपा के रखी, नहीं मैं आपकी कीर्तन में बाधा नहीं देना चाहता था। तो कहाँ है ऊपर के, वो अंतपुर में चले गए, सब औरतें रो रही हैं बैठ के, पुत्र का डेड बॉडी वहाँ पर है। तो निमाय पंडित आते बोलते हैं बेटा जग जाओ, उठो। तो वो जो मृत शरीर है उठ के बैठता है, हाँ प्रभु जी 2 मिनट में हो जाएगा, बताओ तुम कौन हो। तो बालक कहता है आप लोग कौन हो। तो श्रीवास कहता है कि मैं आपका पिताजी हूँ। मालिनी कहते हैं मैं आपके माताजी हूँ। बोले कौन सी माता जी पिताजी, किस जन्म की माता पिताजी। थोड़ा आश्चर्य होता है उनको। तो बालक अनेक माता पिताओं का लिस्ट देता है कि मैं इतने इतने घर में जन्म ले चुका हूँ, आप कौन से वाले माता पिता हूँ। तो उस समय वो बालक के बहाने श्रीवास्तव उनको बोध देते हैं, उनके सामने वो गोलोक धाम चला जाता है। उस समय निमाय पंडित एकांत में जाते हैं, सोचते जो बालक की मृत्यु होने के बाद भी मेरे कीर्तन में बाधा डालने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे भक्त का संग मैं कैसे त्याग पाऊंगा संन्यास लेने के बाद? हाउ विल आई टॉलरेट दी सेपरेशन फ्रॉम श्रीवास पंडित, डिवोटीज लाइक श्रीवास पंडित, कैसे मैं श्रीवास जैसे भक्तों को छोड़ पाऊंगा? ऐसे उनके मन में विचार आए। उसके बाद में आगे कथा कल करेंगे। 24 साल की उम्र में फिर मकर संक्रांति के दिन निमाय पंडित संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के लिए चले जाते हैं, तो उसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की, जगन्नाथ मिश्रा की, सच्ची देवी की, अंतरद्वीप की, निताई गौर प्रेमानंदे।